ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अबूधाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से वार्ता की। उन्होंने दोनों देशों के बहुआयामी संबंधों के बीच नए उभरते क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें बाराकाह परमाणु संयंत्र के संचालन और देखरेख के संबंध में अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता शामिल है। अबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन के बीच दीर्घकालीन प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर भी समझौता हुआ। क्राउन प्रिंस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों की सराहना की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने खाड़ी सहयोग परिषद देशों और ब्राजील के विदेश मंत्री से रियाद में बातचीत की। विदेश मंत्री खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के लिए रियाद में हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैजल बिन फरहान के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने आपसी संबंधों की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने वैश्विक क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहिया से भेंट के दौरान दोनों नेताओं ने भविष्य में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने और शीघ्र ही संयुक्त आयोग की बैठक करने के बारे में चर्चा की। वस्तु और सेवा कर परिषद की 54वीं बैठक नई दिल्ली में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और राज्यों के वित्त मंत्री उपस्थित हैं। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक जून में हुई थी। इसमें परिषद ने सभी इस्पात, लोहे और एल्यूमिनियम के दूध कैन पर 12% जीएसटी की एक समान दर की अनुशंसा की थी। रक्षा मंत्रालय ने 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सुखोई 30 एमकेआई विमानों के लिए 240 एएल 31 एफपी एरो इंजन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इन एरो इंजनों का निर्माण एचएएल के कोरापुट डिवीजन द्वारा किया जाएगा और सुखोई 30 एमकेआई बेड़े की परिचालन क्षमता को बढ़ाया जाएगा। एचएएल सालाना 30 एरो इंजनों की आपूर्ति करेगा। सभी 240 इंजनों की आपूर्ति अगले 8 वर्ष में पूरी होने की उम्मीद है। इससे सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश में 2019 में आयोजित 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की संशोधित सूची जारी करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने जून 2020 और जनवरी 2022 में 6,800 उम्मीदवारों के चयन को निरस्त करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर भी रोक लगा दी है। पिछले महीने उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया था। कई याचिकाओं में भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए आरोप लगाया गया था कि आरक्षित श्रेणियों के लोगों को निर्धारित अनुपात में नहीं चुना गया है। आम आदमी पार्टी ने आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पार्टी ने विजेंद्र हुड्डा को रोहतक से, इंदु शर्मा को भिवानी सीट से, पवन फौजी को उचाना कलां से और जयपाल शर्मा को घरौंडा से उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने महिला डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने के लिए कोलकाता पुलिस आयुक्त को भी बर्खास्त करने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पद्म पुरस्कारों के लिए प्रेरक हस्तियों और नामांकित करने का आग्रह किया है। नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। प्रधानमंत्री ने कई नामांकन प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। चीन में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में आज भारत ने जापान को 5-1 से हराया। सुखजीत सिंह ने 2, अभिषेक संजय और उत्तम सिंह ने 1-1 गोल किया। बम्बई शेयर बाजार का संविदय सूचकांक आज 376 अंक बढ़कर 81,560 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 84 अंक बढ़कर 24,936 पर रह गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।